ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणिर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ॐ शान्तिः 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 शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय हराय नमः ॐ हराय नमः ॐ नमो हराय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय भवाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ नमो भवाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् भज मन शिव शिव जप मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी का प्रसंग चल रहा है। अभ्यास के लिए पहले प्रकरण में तीसरा श्लोक। शब्द स्पर्शादयो विद्या वैचित्र्याद् जागरे पृथक् ततो विभक्ता तत्संविद् ऐकरूप्यान्न भिद्यते तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरं तद्भेदो अतस्तयोः संविद् एकरूपा न भिद्यते सुप्तोत्थितस्य सौ सुप्ता तमो बोधो भवेत् स्मृति सा चावबुद्ध विषया अवबुद्धं तत्तदात्मः सबोधो विषयाद् भिन्नो न बोधात् स्वप्नबोधवत् एवं स्थानत्रयप्येका संवित्तद्वद्दिनान्तरे मासाब्दयुगकल्पेषु गतागम्ये स्वनेकधा नोदेति नास्तमित्येका संविदेशा स्वयं प्रभा। हाँ, अब मूल प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। तत्पादाम्बुरहद्वन्द्वसेवा निर्मलचेतसाम् गुरु के चरणों की नित्य निरंतर सेवा करके जिसका चित्त निर्मल हो गया है, ऐसे निर्मल चित्त वालों को आसानी से तत्व समझ में आ जावे, इसके लिए मैं ये तत्व विवेक नाम प्रकरण की रचना करता हूं। ये प्रतिज्ञा वाक्य है। तो चित्त को निर्मल करने का एक ही साधन विद्यारण्य मुनि जी बता रहे हैं, वह है गुरु के चरणों की सेवा। औरों की सेवा से और कुछ मिल सकता है? लेकिन चित्त निर्मल नहीं होगा। संसारियों की सेवा करके भोग मिल सकता है, लेकिन उससे चित्त निर्मल नहीं होगा। ईश्वर की सेवा करके भक्ति मिल सकती है, चित्त निर्मल नहीं होगा। ब्रह्म विद्या के द्वारा मोक्ष मिल सकता है, चित्त निर्मल नहीं होगा। प्रश्न ये है, चित्त निर्मल हुए बिना ईश्वर की भक्ति भी स्थिर नहीं होगी, चित्त निर्मल हुए बिना ज्ञान में दृढ़ता परिपक्वता भी नहीं आ सकती। इसीलिए गुजराती में कहावत है, सुने सुने पाके कान, थोड़े न थयो ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि श्रोता तो हो गए, गुरुचरण की सेवक नहीं हुए। आश्रम में बैठो जरा दो चार महीना, तो गुरु जब ये कहता है तो महाराज फुर्सत तो है नहीं। कल सुबह वापस टिकट लेकर आए हैं तो बड़े मुश्किल से आज रात आपके सान्निध्य में रहे, इसलिए हम आए हैं। और आज रात भर जो कुछ करना है आप कर दीजिए, ताबड़तोड़। तो गुरु जी कहते हैं कि ठीक है, तत्त्वमसी। तो जब वापस आए तो वह टिका नहीं। क्योंकि चित्त शुद्ध हुआ नहीं, सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए पहले की जो इतिहास देख लो, हमारे भारतीय इतिहास, मुमुक्षु सभी मोक्ष इच्छा वाले, मुमुक्षु ज्ञान के लिए घर छोड़कर निकले हैं, गए हैं, वानप्रस्थी हुई है। ये बात अलग है कि बाद में वापस आ गए और ज्ञान प्राप्त करने के बाद फिर अपना व्यवहार चलाया, ऐसा भी इतिहास है, लेकिन पहले तो निकले हैं। इसलिए यहां विद्यारण्य मुनि जी बोलते हैं, सुख बोधाय निर्मल चेतसाम सुख बोधाय, शुद्ध चित्त वालों को आसानी से समझ में आ जाए, और अशुद्ध चित्त वालों को तो जितना प्रयत्न कर लो तो भी समझ में नहीं आएगा। और समझ तो आ जाता है, समझ में तो आ जाता है, समझ में आना अलग चीज है, समझदारी टिकना और समझदारी फलीभूत होना दूसरी चीज है। समझ में आ जाना एक अलग चीज है कि बात समझ में आ गई है, स्कूल में जब मास्टर पढ़ाता है तो वह विद्यार्थी को समझ आ जाए ये तो ठीक है, और अक्सर आता भी है, समझ तो जाते हैं, वह समझदारी परीक्षा के समय में 3 घंटे के अंदर उपस्थित हो जाए तब तो वो समझदारी काम आए, है ना? एग्जामिनेशन के समय में परीक्षा हॉल में जब हाथ में प्रश्न पत्र आवे उस समय में वो समझदारी उपस्थित हो जावे तब तो वो समझदारी फलीभूत हो, अन्यथा हाथ में प्रश्न पत्र आते ही वह गायब हो जाए तो वह समझदारी किस काम का। तो हमारी समझदारी कैसी है, इसी प्रकार की है। कैसी है हमारी वेदांत समझदारी? समझदारी तो है, समझ तो ले हैं, वेदांत समझ तो रहे हैं, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है तब वह गायब हो जाता है। पति मरता है तो वह समझदारी गायब हो जाता है, पत्नी मरती है तो उस समय वह समझदारी गायब हो जाती है, बाप मरता है तो समझदारी गायब हो जाता है, मां मरती है समझदारी गायब हो जाता है। समझ में आ गया कि मरता नहीं है, समझ में तो आ गया कि मरता नहीं है, लेकिन जब मरता है वो समझदारी गायब। समझ में आ गया कि सब जगत मिथ्या है, माया कल्पित है, दक्षिणामूर्ति श्लोक पढ़ा है आप लोगों ने, माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रिकृतम। समझ तो आ गए, समझदारी तो आई है, तो जब घाटा होता है तब फिर वो समझदारी गायब हो जाता है। मिथ्या चीज का घाटा हो सकता है? बोलो। और मिथ्या चीज का भी लाभ हो सकता है? मिथ्या चीज किसी को मिल गया तो उसको लाभ हुआ कि नहीं है? किसी को मिथ्या चीज मिल गया तो उसको लाभ माना जाए कि नहीं? तब वह मिथ्या चीज यदि घाटा हो गया, खो गया, तो घाटा माना जाएगा कि नहीं? तो मिथ्या चीज में लाभ और हानि की तो कोई बात ही नहीं है। समझ तो गए हैं, समझ गए कि नहीं बोलो? अब ये टिकेगा कि नहीं? है? जब ऑडिट के बाद बैलेंस शीट आएगा तो जब बैलेंस शीट देखेंगे कि पिछले साल का अंक और इस साल के अंक में बड़ा फर्क आ गया, वो फर्क क्या है कि इस साल के अंक छोटे आ गए, पिछले साल का अंक थोड़ा बड़े अंक थे, इस साल के अंक छोटे आ गए, तो उस समय टिकेगा कि नहीं? तो समझदारी उस समय काम आनी चाहिए। ये तो किसको टिकेगा? तो बोले गुरु पादाम्बु तत्पादाम्बु सेवने सेवा निर्मल चेतसाम। यदि इस तरह जिसका चित्त शुद्ध हुआ है तो उसके चित्त में वो समझदारी टिक जाएगा। सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। ये प्रतिज्ञा के बाद विषय में प्रवेश करते हैं विद्यारण्य मुनि जी। जीव ब्रह्मणोर एकत्व लक्षण विषय संभावनाय जीवस्य सत्यज्ञानादि रूपताम दिदर्शयिषुः आदौ ज्ञानस्याभेद प्रतिपादनेन नित्यत्वं साधयति। उपक्रम युवा वेदांत का लक्ष्य क्या है? जीव ब्रह्म की एकता। अनुबंध चतुष्टय में ये बात स्पष्ट हो चुकी है। उसको समझाना है, शुद्ध चित्त वाले को यह समझाना है कि जीव और ब्रह्म दोनों एक है, ये समझाना है। इसके लिए पहले लोक व्यवहार में, दैनंदिनी व्यवहार में जो एकता है उसको समझा रहे हैं, और उसके माध्यम से ये समझाना है कि जीव ब्रह्म की एकता है। तो क्या है दैनंदिनी में, लोक व्यवहार में? शब्द स्पर्शादयो विद्या वैचित्र्यात् जागरे पृथक। ये सभी हम लोग, आप लोग सभी लोग ये अनुभव कर ही रहे हैं। पांच विषय हैं, उन पांच विषयों को वेद्य बोलते हैं। वेद्य माने ज्ञान का विषय, ज्ञान द्वारा प्रकाशित होने वाले तत्व। वेद्या बोध और बोध्य। बोध माने ज्ञान, है ना? बोध का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान। बोध्य माने उस ज्ञान, ज्ञान के द्वारा जिस वस्तु को प्रकाशित हुआ उसको क्या कहेंगे? बोध्य। मेरे हाथ में क्या है? पेपर वेट है। तो ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान के द्वारा क्या प्रकाशित हुआ? वस्तु प्रकाशित हुआ, है ना? तो ये हो गया बोध्य, इसी को यहां वैद्य कहा, ये बोध्य, और बोध आपके पास है, बोध्य मेरे हाथ में है, ज्ञान आपके पास है, ज्ञेय मेरे हाथ में है, बोध आपके पास है, बोध्य मेरे हाथ में है। ये संसार में बोध्य टोटल पांच है, और उसी पांच के अवांतर अवांतर भेद हैं, मुख्य पांच ही हैं। क्योंकि वेदांत के दृष्टि में विषय, बोध्य, वेद्य टोटल पांच है। वह है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी का खेल है भाई। खट्टा, मीठा, कड़वा, तीता, कषाय, लवण, ये सब रस का ही अवांतर भेद हैं, है कि नहीं? इसी तरह लाल, पीला, हरा, नीला, ये सब क्या है? रूप का ही अवांतर है। इसी तरह कठोर, कोमल, गर्मी और ठंडा, ये सब स्पर्श का ही अवांतर है। इसी तरह निंदा और स्तुति आदि शब्द का ही अवांतर भेद है। सुगंधी, दुर्गंधी आदि गंध का ही भेद है, इसी के अंतर्गत सब है। तो इसीलिए वेद्या यानी बोध्या या विषय, शब्द, स्पर्श आदि, शब्द और स्पर्श, ये तो विद्यारण्य मुनि जी ने अपने मुख से ही उच्चारण कर दिया। आकाश का गुण शब्द और वायु का गुण स्पर्श, आदिपद से तेज का गुण रूप और जल का गुण रस और पृथ्वी का गुण गंध। सारा संसार यही पांच विषय के द्वारा खड़ा है, और सारे संसार में ये पांच के अलावा जानने के लिए, संसार में पांच के अलावा जानने के लिए छठा नहीं है। अब आप कहोगे कि महाराज ये पांच के अलावा भी तो जानने के लिए और हैं, ईश्वर है, आत्मा है, ब्रह्मा है, ये जानने के लिए नहीं है, ये जानने के लिए नहीं है, ध्यान देना, क्योंकि ये ज्ञान का विषय नहीं है। ये तो ज्ञान स्वरूप है, तो ईश्वर को तुम ज्ञान का विषय बनाओ, ये तो गलत है भाई। ईश्वर बोध्य नहीं हो सकता, वेद्य नहीं हो सकता है, आत्मा बोध्य नहीं हो सकता है, वेद्य नहीं हो सकता है, ब्रह्म परमात्मा वेद्य बोध्य नहीं हो सकता है। फिर ये सब क्या है महाराज? ये तो बोध स्वरूप है, बोध स्वरूप बोध्य नहीं होता है, बोध जो स्वरूप है वह बोध्य नहीं होता। जो बोध स्वरूप नहीं है वो बोध्य है, शब्द बोध स्वरूप नहीं है, बोध स्वरूप माने ज्ञान स्वरूप नहीं है, विषय है, इसीलिए उसको जानना पड़ता है। स्पर्श बोध स्वरूप नहीं है, इसलिए उसको जानना पड़ता है। रूप बोध स्वरूप नहीं है, जानना पड़ता है। रस बोध स्वरूप नहीं है, जानना पड़ता है। गंध बोध स्वरूप नहीं है, जानना पड़ता है। कोई और प्रकाशित करे तब ये प्रकाशित होए, कोई और जाने तब ये जाना जाए। तब ये बुद्धि हो गए, विषय हो गए। तो ये श्लोक का अर्थ, शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्यात्, ये परस्पर वैचित्र, इनका स्वभाव विपरीत है। वैचित्र्यात् तस्मात् जागरे पृथक, जागरे क्योंकि ये विषय जागृत अवस्था के हैं। ये पांचों विषय किस अवस्था के हैं? जागृत अवस्था के हैं। इनका ग्रहण जागृत अवस्था में ही होगा, इसलिए जागरे, जागृत अवस्था की परिभाषा की है। क्या है जागृत अवस्था, किसको बोलते हैं जागृत? इंद्रियैर अर्थोपलब्धिरिति जागरितम्, ये परिभाषा है। जिस समय इंद्रियों के द्वारा पदार्थों को उपलब्ध करते हो, इंद्रियों के द्वारा पदार्थ का ग्रहण करते हो, उस समय को जागृत समय कहा जाता है। अर्थ माने पदार्थ, पदार्थ माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कोई व्यक्ति निद्रा में रसगुल्ला खाएगा कि नहीं है? निद्रा में रसगुल्ला खाएगा कि नहीं है? स्वप्न अलग चीज हो, हाँ ये ध्यान देना। यदि इंद्रियों से, जिह्वा से कोई रस ग्रहण कर रहा हो, भले ही वो आंख बंद करके सो रहा हो, वो सो नहीं रहा है। यदि वह कोई शब्द सुन रहा हो, भले खाट में आंख बंद करके लेटा हो, निश्चल भाव से यदि वह शब्द सुन रहा है तो वह सोया नहीं है। इसलिए इंद्रिय ही अर्थ उपलब्धि, पांच इंद्रियों में से एक इंद्रिय के द्वारा भी एक विषय को यदि ग्रहण कर रहा हो तो वो अवस्था उसके लिए जागृत ही है, वो किसी भी हालत में सोया हुआ नहीं कहा जाएगा, नहीं सो रहा है वो। ये नहीं समझ लेना कि पांचों इंद्रियों के द्वारा पांचों विषय ग्रहण कर रहा हो तभी जागृत हो, ऐसा नहीं समझ लेना। अब आप आंख बंद करोगे, आंख बंद करके बैठोगे तो रूप का तो ग्रहण नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या जागरण नहीं हो रहा है? शब्द सुन रहे हो, आंख बंद कर लो, कान में रुई डाल लो, तो नाक से यदि सुगंध दुर्गंध ग्रहण कर रहा हो, त्वचा से गर्मी और ठंडी कठोर स्पर्श का अनुभव कर रहा हो तो जागृत, व्यक्ति जगा हुआ है। तो जागरे अर्थोपलब्धि अवस्थायाम, इंद्रिय ही अर्थोपलब्धि अवस्थायाम जागरे शब्द स्पर्शादय परस्पर वैचित्र्यात् परस्परम पृथक, एक नहीं हो सकती है। क्योंकि शब्द कान से सुना जाएगा, स्पर्श त्वचा से। स्पर्श को कान से ग्रहण नहीं कर पाएंगे और शब्द को त्वचा से ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए विषय ही अलग अलग हैं, इसलिए उनको ग्रहण करने के साधन भी परमात्मा को अलग अलग बनाना ही पड़ा। शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्याद जागरे पृथक ततो विभक्ता। ये जागृत अवस्था में ये पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं, इसीलिए यह विभक्त ही हैं, एक नहीं हो सकते। और एक ही इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो सकते ये पदार्थ। शब्द स्पर्श रूप रस गंध एक ही इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो सकता, इसलिए पृथक पृथक इंद्रियों से पृथक पृथक समय में पृथक पृथक प्रयत्न से ग्रहण करना पड़ता है। हालांकि कई बार हमको भ्रांति होती है कि हम एक ही समय में दो पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं, दो से अधिक को भी ग्रहण करते हैं यानी जानते हैं, लेकिन वेदांत की प्रक्रिया यह है। आचार्यों ने यह कहा कि कोई भी एक समय में एक ही वस्तु को ग्रहण कर सकता है, एक के अलावा अन्य वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता। जिस वस्तु विषय को ग्रहण करेगा उसी विषयाकार वृत्ति बननी पड़ेगी। एक समय में एक अंतकरण की वृत्ति एक ही विषयाकार बनती है, दो विषयाकार वृत्ति बनती ही नहीं। तो आप लोग वृत्ति के बारे में जब पढ़ोगे पता चलेगा अंतकरण की वृत्ति एक बार में एक ही प्रकार की बनती है, और जिस विषयाकारक वृत्ति बनी तो उसी समय वो विषय ग्रहण हो गया और विषय छूट गए। ये बात अलग है कि वृत्ति झड़प से बन सकती है, तो आचार्यों का कहना है कि दो उंगलियों को कोई भी व्यक्ति एक ही बार एक ही समय में नहीं देख सकता। इस पर दृष्टि टिकी तो ये छूट जाएगा, इस पर दृष्टि गई तो ये छूट जाएगा है? ये तर्जनी है, मध्यमा है करके आप जब इसको पृथक करने लग जाओगे, तर्जनी को निश्चय करने के लिए तर्जनी आकार वृत्ति बनेगी, मध्यमा आकार वृत्ति छूट जाएगा, मध्यमा आकार वृत्ति बनाने के लिए तर्जन्य आकार वृत्ति छूट जाएगी, क्योंकि वृत्ति तो एक ही है। लेकिन आपको लगता यह है कि हम एक ही आंख से एक ही बार में दोनों उंगली देख रहे हैं, देख भले ही रहो निश्चय नहीं कर सकते हो। निश्चय करने के लिए तो वृत्ति चाहिए, और वृत्ति के बिना देखना बनता नहीं है। ये वेदांत की विशेष प्रक्रिया है। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं पृथक पृथक पदार्थ पृथक हैं, ग्रहण करने के साधन भी पृथक हैं, वृत्ति भी पृथक पृथक बनेंगे। ध्यान देना, वृत्ति और बोध में बड़ा अंतर है। वृत्ति चित्त की है, समझ गए? वृत्ति चित्त की है, वृत्ति अंतकरण की है, अंतकरण जड़ है। तब अंतकरण की जो विषयाकार परिणाम है वो भी जड़ ही होगा, तो वृत्ति भी जड़ ही है। वृत्ति चैतन्य नहीं हो सकता है। लेकिन कई बार आप लोगों ने वेदांत सुनी है, वृत्ति के साथ में चेतना का समावेश रहता है, उसी को वेदांत ने फल कहा। बोध फल है, जिसको तुम फलव्याप्ति बोलते हो वो उसका नाम बोध है। वृत्ति वृत्ति आरूढ़ चैतन्य, वृत्ति बोध नहीं है, वृत्ति साधन है और बोध प्रकाश है, बोध फल चैतन्य है। चैतन्य को ही फल कहेंगे। वहां मैं बोल रहा हूं, ये तो बोलना रूपी क्रिया हो रही है और आप सुन रहे हो, तो सुनते समय में आपके अंतकरण की वृत्ति शब्दाकाराकारित बनी हुई है और मेरे द्वारा बोले हुए शब्द के आकार की आपके अंतकरण की वृत्ति कान के द्वारा कान से बाहर गूंजे हुए शब्द को प्रकाशित कर रही, वृत्ति प्रकाशित नहीं करती। वृत्ति वहां तक पहुंच गए जहां वो शब्द है और अंतकरण की जो चेतना है जिसको वेदांत के भाषा में फल कहते हैं, वेदांत के भाषा में क्या है, वृत्ति आरूढ़ चैतन्य, यानी वृत्ति आरूढ़ चैतन्य का नाम वेदांत में क्या है, फल। फल कहो, वृत्ति आरूढ़ चैतन्य कहो और उसी को बोध कहा जाएगा यहां, और उसी को यदि सच में कहा जाए उसी का नाम तुम हो। वृत्ति में आरूढ़ जो चेतना है वो क्या है, वही तुम हो। मेरे द्वारा बोले हुए शब्द जो बाहर स्पेस में गूंज रहे हैं उसको प्रकाशित करने के लिए यानी जानने के लिए, अर्थात प्रकाशित करने के लिए। शब्द को कौन प्रकाशित करेगा, बत्ती चैतन्य। तो ये बाहर की जो शब्द है उसको प्रकाशित कौन करेगा, तो चैतन्य। चैतन्य अंदर है, शब्द बाहर है, कैसे प्रकाशित करेगा। तो शब्दाकाराकारित वृत्ति बनेगी अंतकरण की और वो वृत्ति के साथ आप आरूढ़ होकर, वृत्ति में आरूढ़ होकर श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द जहां है वहां तक वृत्ति आएगी, वृत्ति में आरूढ़ होकर आप आएंगे। अब अपने अपने घर से आप यहां आए प्रवचन सुनने के लिए, गाड़ी में चढ़कर आए ना, समझे कि नहीं। अब अपने अपने घर से यहां आए तो गाड़ी में चढ़कर आए, संस्कृत भाषा में कहें तो बहाना आरूढ़ हो गए। तो बहाना आरूढ़ होकर उसने वाहन ने वाहन किया और यहां लाकर छोड़ दिया। इसी तरह आप अंदर हैं, शब्द बाहर है, शब्द अंदर नहीं जा सकता, शब्द अंदर नहीं जा सकता। अंदर क्या जाएगा, अर्थ जाएगा, शब्द नहीं जाएगा, शब्द का अर्थ जाएगा। शब्द तो छिलका है, गुठली है, और शब्द में जो अर्थ है वो अर्थ आपके साथ फिर अंदर जाएगा। उस अर्थ को, शब्द में विद्यमान अर्थ को अंदर लाने के लिए आपको यहां आना पड़ेगा शब्द तक। तो आप कैसे आएंगे, तो वृत्ति आरूढ़ होकर आएंगे। ये वेदांत की प्रक्रिया है, आपको समझ में आए चाहे ना आवे, कहना कहना हमारा काम है, है? सेवा निर्मल चेतसाम सुखबोधाय, यदि गुरु के चरण की सेवा की होगी तो समझ जाओगे। गुरु के चरण की सेवा नहीं की हो है? है? गुजराती आरती है ना एक, गुरु जी मड़े मीठा मेवा है, क्या है, आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनी सेवा। हाँ, संत मले मां सुख पाऊं, गुरु जी मले मीठा मेवा, खाली वही खाया हो तो समझ में आएगा, नहीं समझे आए कि नहीं। गुरु जी मले, गुरु जी का दर्शन किया, गुरु जी ने मेवा दी, खाए चले, तब तो नहीं समझ में आएगा। सेवा की हो तो समझ में आएगा। तो कहना हमारा काम है भाई। तो वृत्ति में आरूढ़ होकर आप बाहर आएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं समझ लेना, जिस समय शब्द सुनने के लिए आप वृत्ति आरूढ़ होकर शब्द जो बाहर है, बाहर आ गए तो अंदर खाली हो गए, ऐसा नहीं समझना फिर। हाँ, जैसे मीटर में से करंट तार के माध्यम से बल्ब तक पहुंचता है, बिना तार का तो करंट नहीं पहुंचता, बल्ब को प्रकाशित करता है। और जिस समय तार के माध्यम से बल्ब में आकर बल्ब को प्रकाशित किया, उस समय मीटर में हुआ नहीं है, ऐसा नहीं समझ लेना। मीटर खाली हो गया ऐसा नहीं समझना, मीटर में तो है ही है। मीटर में करंट होते हुए भी तार के माध्यम से बल्ब तक आता है कि नहीं प्रवाह? इसी तरह आप अंतकरण को खाली करके वृत्ति के माध्यम से बाहर विषय देश में तो आते नहीं हो, अंतकरण में भी हो, विषय देश में आने के लिए आपको वृत्ति की आवश्यकता पड़ेगी, बिना वृत्ति के आप विषय देश में नहीं आ सकते। हाँ, जैसे आपको स्वर्ग जाना हो तो बिना आतिवाहिक शरीर के स्वर्ग नहीं जा सकते। आप मरकर ऐसी स्वर्ग नहीं जा पाओगे, स्वर्ग जाने के लिए आपको वाहन चाहिए, उसी का नाम तो आतिवाहिक, उसी का नाम तो सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर भी न हो, अतिवायु भी न हो, तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग जाना नहीं बनेगा, स्वर्ग में रहना बनेगा, स्वर्ग जाना नहीं बनेगा, क्योंकि गति आगति तो उपाधि के सहित है और स्थिति बिना उपाधि के भी हो जाएगा। समझे कि नहीं? स्थिति तो बिना उपाधि की है, सत्ता तो बिना उपाधि की है, लेकिन गत्यागति की बात करोगे तो फिर वहां उपाधि की आवश्यकता पड़ेगी। तो सोपाधिक चैतन्य ही गत्यागतिवान है, निरुपाधिक चैतन्य तो गत्यागत्यवान है ही नहीं। विषय काफी कठिन है। तो शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्यात्, वैचित्र्य माने भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं, शब्द भिन्न स्वभाव वाला है, स्पर्श भिन्न स्वभाव वाला है, रूप भिन्न स्वभाव वाला है, रस भिन्न स्वभाव वाला है, गंध भिन्न स्वभाव वाला है, वैचित्र्य। तस्मात् जागरे पृथक, ये अलग अलग है, ततो विभक्ता, इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये पदार्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विभक्त हैं, ये अलग अलग ही रहेंगे, शब्द का और स्पर्श का एकता नहीं हो सकता। शब्द स्पर्श की एकता नहीं, स्पर्श रूप का एकता नहीं, और रूप और रस की एकता नहीं, रस और गंध की एकता नहीं, इनकी परस्पर एकता नहीं। पृथक लेकिन एक बात ध्यान रख लेना भाई, तत्संबित तत्संबित, संबित माने सम्यक व्यक्ति इति संबित, सम्यक व्यक्ति पदार्थम इति संबित, जिससे पदार्थों को ठीक से निश्चय किया जाता है। किससे? ज्ञान से। ज्ञान से ही ना पदार्थ निश्चय होगा। इदमित्थम यो यही है, ये फूल की माला ही है, माला है, ये किससे निश्चय हुआ? सम्मित, सम्यक व्यक्ति है, इसी को नाम सम्मित। सम्मित माने ज्ञान, ज्ञान माने वृत्तियारूढ़ चैतन्य, वृत्तियारूढ़ चैतन्य माने फल। ये फल कहो, वृत्तियारूढ़ चैतन्य कहो, चाहे ज्ञान कहो, चाहे सम्मित कहो, ये पर्यायवाची शब्द है, क्योंकि इन अलग अलग पदार्थों को निश्चय करने वाला एक ही है। तत्संबित, संबित ज्ञान एक रूपा, संविदो एक रूपा, संविद में एक रूपता है, संविद एक ही है। समझे कि नहीं? पुष्प अलग है, फल अलग है, पत्र अलग है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, ये अलग अलग है। लेकिन अयम फल फलम, इदम फलम, इदम फलम अयम पुष्प, ये फल है, ये पुष्प है, ये निश्चय करने वाला संबित एक है। दो संबित नहीं है, दो वस्तुओं को निश्चय करने वाले दो ज्ञान नहीं है। इस श्लोक का ये अर्थ निकला, दो ज्ञान नहीं है का मतलब हो गया आप दो नहीं है। जाना किसने? ये क्या है पेपर वेट? जाना किसने? ये क्या है माला? जाना किसने? माला अलग है, पेपर वेट अलग है, वृत्ति अलग बनी। पेपर वेट को जानने के लिए अंतकरण की वृत्ति, पेपर वेट का आकार का होना पड़ा। माला को जानने के लिए आपकी अंतकरण की वृत्ति माला आकार की होनी पड़ी, और मालाकार वृत्ति से आकर माला को आपने जाना, पेपर वेट आकार वृत्ति के माध्यम से आपने पेपर वेट को जाना। आप एक हैं बस, उसी का नाम संबित एक। शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्याद जागरे पृथक ततो विभक्ता, यहां तक अलग है। अब आगे फल क्या है? तत्संबित, तत्संबित माने तत् माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध की संबित, शब्द को जानने वाला शब्द संबित, गंध को जानने वाला गंध संबित, रूप को जानने वाला रूप संबित, रस को जानने वाला रस संबित, स्पर्श को जानने वाला स्पर्श संबित, संबिदो एक। उदाहरण के रूप में, इस कमरे में कुर्सी बहुत है, इस हॉल में कुर्सी बहुत है, अलग अलग कुर्सी में अलग अलग व्यक्ति बैठे हुए हैं, सभी व्यक्ति को और सभी कुर्सियों को, अलग अलग कुर्सी को अलग अलग व्यक्ति को प्रकाशित करने वाला प्रकाश रोशनी एक ही है, रोशनी अलग अलग नहीं हो सकता है। इसी तरह विषय अलग अलग हो सकते हैं, संबित ज्ञान एक है। और इसके द्वारा क्या कहने चाहते हैं कल देखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।